أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ زمانے کو کس طرح پلٹ کے لا رہا ہے، کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے. اور پھر اس حوالے سے قرآن کریم کی دیگر آیتیں بھی کہ جن میں بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں. اور یہ جملہ بھی شاید میں محاورتاً کہہ گیا، ورنہ حقیقت میں اللہ کے یہاں دیر بھی اتنی نہیں ہے. جو کبھی دیر نظر آتی ہے تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی یا ہماری کسی غفلت کا بھی دخل ہوتا. کل مجلس کے ابتدائی حصے میں جس مسئلے کو میں نے اس لیے بہت سرسری بیان کیا کہ وہ مذات خود اپنی جگہ ایک بالکل الگ عنوان ہے، اور اسی شہر ٹورنٹو کے مومنی اس عنوان پر میری 10 مجالس الگ سے سن چکے ہیں، اور حال ہی میں تو انہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا وسیع ٹاپک ہے. لیکن سوال تو بہرحال یہ پوچھ لیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی نشانی، بغیر کسی علامت، بغیر کسی سائن کے زمانے کا امام ظاہر ہو جائے؟ درجے میں نے باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ وہ حدیث پڑھی تھی، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس پر ویسے بھی ہم لوگ بغیر حدیث پڑھے ہوئے، یعنی جن کے علم میں بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے، وہ پھر بھی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. جنہیں نہیں معلوم کہ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس ہے کہ آنے والا امام بغیر کسی علامت، بغیر کسی نشانی، بغیر کسی سائن کے ظاہر ہو سکتا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم، مگر پھر بھی وہ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ اس حدیث پہ عمل کرتے جاتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں کہ مولانا یہ ہو کیسے سکتا؟ ارے تم خود ہی تو اس پہ عمل کر رہے، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال ہمارے یہاں وہی دیکھیے، جو کل ایک مسئلہ سرسری طور پہ زیر بحث آیا، دوبارہ اس کو اتنا ہی سرسری لے کے پھر اس کی مثال دینا. ہمارے یہاں دعا کا کنسپٹ کیا؟ دعا کا کنسپٹ یہی تو ہے نا کہ اللہ ہماری حالت کو بدل سکتا ہے دعا کے ذریعے. ورنہ اگر یہ طے ہو جائے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، ہم نے کیوں دعا مانگی کہ اللہ اس کو صحت دے؟ بھائی دو ہی باتیں، یا تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو صحت مل کے رہے گی تو ہماری دعا کا فائدہ جیسے ویسے ہی صحت یاب ہونا، اور یہ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ اسی بیماری کے عالم میں مر جائے گا تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہے؟ اسے مرنا ہی مرنا ہے، تمہاری دعا ویسٹیج آف ٹائم بن رہا. دعا مانگی کیوں جاتی؟ بھئی ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مولانا روزی کے حوالے سے کوئی دعا بتائیے. مگر دعا کی ضرورت کیا؟ دو ہی صورتیں، یا اللہ نے تمہارے لیے کوئی اچھا جاب لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اور اگر لکھا ہے تو بغیر دعا ہی کے تمہیں مل کے رہے گا، اور اگر نہیں لکھا ہے تو تم ساری دعائیں، سارے اعمال، سارے وظیفے، سارا قرآن پڑھ ڈالو. لکھا ہی، جب یہ لکھا ہے کہ اسے کچھ نہیں ملنا تو فائدہ کیا دعاؤں کا؟ دیکھیں پورا فلسفہ ہے دعا اسی بات پر کہ اللہ نے جو بھی لکھا ہو دعا کے ذریعے سے اسے بدلا جا سکتا ہے. اور یہی چیز سے ہمارا سوال بنتا کہ آخر ہم ہر مجلس کے بعد اور آخر ہم ہر نماز کے بعد اور آخر ہم تمام اعمال کے اختتام پر اور آخر ہم اپنی آخری زیارت کے آخری جملے میں یہ کہتے کیوں ہیں کہ اجل اللہ یا ان اجل. بھائی اگر امام کا ظہور ان نشانیوں ہی کی وجہ سے ہے کہ جو 10 بتائی گئی تو ہماری دعا اجل اللہ کا فائدہ کیا جب تک کہ وہ نشانی نہیں آئے گی امام ظاہر نہیں ہوں گے. اجل اللہ کی دعا جو ہر زیارت کے اختتام میں شامل کی جاتی ہر مجلس کے بعد پڑھی جاتی یہ دعا خود اس بات کی دلیل کہ اللہ نے امام کے ظہور کی ایک تاریخ رکھی. لیکن اگر صاحب ایمان دعا مانگے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ بعد میں ظاہر ہونے والے امام کو وقت سے پہلے ظاہر کر سکتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے تو آپ کی دعا یا جل اللہ بالکل بیکار ہے اور شاید اس لیے قبول بھی نہیں ہو رہی کہ دعا پڑھنے والا بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس دعا کے ذریعے میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں. میں یہی تو مانگ رہا ہوں کہ اے خدا تو نے اپنی آخری حجت کے ظاہر ہونے کی جو تاریخ رکھی ہو لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ ان کو ابھی ظاہر کر دے انہیں فوراً ظاہر کر دے. یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد یہ دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی. یہ لفظ اجل اللہ امام مظلوم کی اسی حدیث کو ہمارے الفاظ کے اندر ڈھالا گیا ہے کہ جس حدیث کا خلاصہ یہ کہ اللہ اپنی مصلحت کے تحت بغیر کسی نشانی کے میرے اس بیٹے کو ظاہر کر سکتا. ویسے اس کا الٹا پہلو بھی اور وہ یہ کہ ساری نشانیاں آنے کے بعد بھی مرضی پروردگار نہ ہو تو امام کے ظہور میں اور تاخیر ہو سکتی. میں ایک اور انداز سے اس بات کو سمجھاؤں. ایک فرض کیجئے کہ اللہ نے امام کے ظہور کی ایک تاریخ طے کی اب بطور مثال 2035. اس لیے کہ بعض دشمنان اسلام نے 1995 میں کھلم کھلا یہ کہا یہ نیکسٹ 40 سال ہیں جس کے اندر اسلام کا خاتمہ کر دینا اور 2035 کی تاریخ باقاعدہ دشمنان اسلام کی جانب سے دی گئی. اب تک کی تاریخ موجود کہ وہاں تک اسلام کو اس دنیا سے ختم کر کے رہنا. فرض کیجئے کہ اللہ امام کے ظہور کی یہ تاریخ بھی رکھی یہی تاریخ رکھی مگر ظہور اس تاریخ کو بھی ہو سکتا اور چاہے اللہ تو اس سے پہلے بھی کر سکتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو تاریخ اللہ نے خود رکھی اس کے اندر مزید 50 سال کا ڈیلے ہو جائے. اور بہت مختصر میں اس لیے کہ اس موضوع کی گنجائش فی الحال نہیں ایک اشارہ کر رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ ہماری قوم پڑھنے کی عادت کو دوبارہ پیدا کرے. پہلے تھی ہمارے بزرگ بڑی محنتوں کے ساتھ کتاب کی شکل میں یہ دین ہم تک پہنچایا یادہ دوبارہ پیدا کریں. ایک مختصر سے کتابچے کا ریفرنس دے رہا ہوں ہارڈلی 48 پیجز کا لیکن اس اعتبار سے بڑا اہم کہ اس 48 پیجز کے اندر کربلا کے کانسیکوینسز کو جتنے اچھے طریقے سے جمع کیا گیا اور ایک بالکل نئے اینگل سے کم از کم انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے بالکل نیا اینگل. اور یہ کتابچہ ولی فقی رہبر امر مسلمین یعنی حضرت آیت اللہ العظمی آغائے سید علی خامنائی کا یہ کتابچہ جس کا نام ہے کہ امام زین العابدین کی سیاسی زندگی. میں کسی بہت ہی زیادہ موٹی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا کسی ضخیم کتاب کا حوالہ نہیں دیتا. یہ 400 صفحے کی کتاب کون پڑھے گا 48 پیجز. اس کے اندر ایک جگہ پر بڑے عجیب انداز سے ایک بہت ہی مشکل مسئلے کو حل کیا اور وہ یہ کہ ظہور امام کافی پہلے ہو سکتا تھا بلکہ ایک آدھ امام نے اپنے بیٹے کے ظاہر ہونے کی تاریخ بھی بتائی تھی اور بعد میں یہ ڈیلے ہو گئے, کیونکہ اب اس مسئلے کا ہم سے تعلق نہیں, یہ ہماری تو ہماری, ہمارے دادا کے دادا کے پر دادا کے سکر دادا کے پر دادا کے لکڑ دادا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات, یعنی یہ ہمارا مسئلہ نہیں, اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. مگر اسلامی سال کے پہلے تین سینچریز کے اندر ایک ایسی تاریخ خود امام معصوم کی جانب سے دی گئی تھی کہ فلا تاریخ کو ہمارے بیٹے کے ظاہر ہونے کے چانسز بہت زیادہ, اور پھر امام نے یہ بھی کہا کہ تمہاری کچھ غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے میرے بیٹے کے ظہور میں ڈیلے کیا. اب یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ بنتا ہے, جہاں بھی میں اشارہ کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ذرا اس کی تفصیل میں جائیے. میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ اس کو سمجھانا اتنا آسان بھی نہیں, کتاب کی شکل میں جو چیز آپ کے سامنے ہوگی, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا آپ نے پیراگراف دوبارہ پڑھا, سمجھ میں نہیں آیا پیراگراف تیسری مرتبہ پڑھا. خطیب کی مجلس کے اندر آپ کو یہ گنجائش نہیں کہ لائف مجلس سمجھ میں نہیں آیا آپ نے بٹن دبایا اور ریوائنڈ پہ چلا گیا, تو اس کے اندر کنفیوژن بڑھ سکتا. اور کتاب کیونکہ بہت ہی مختصر ہے 48 pages کی, مگر میں کدھر چلا گیا, میں ادھر چلا گیا کہ ظہور امام جو اس کی تاریخ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بتائی مگر نظام قدرت میں کہیں پہ ہے, اس میں بھی ڈیلے ہو سکتا. اور جو ظہور امام کی تاریخ لوح محفوظ پر لکھی ہے وہ اس سے بھی پہلے ہو سکتا. اور اب اگر یہ دو سوال آپ کے ذہن میں آئیں تو دونوں کا جواب ایک ہی. پہلا سوال یہ کہ لوح محفوظ پہ جو تاریخ لکھ دی گئی ہے تو آخر ڈیلے کیوں ہوگا, اور دوسرا سوال اور اگر لوح محفوظ کی تاریخ ہے تو اس میں جلدی کیوں ہوگی. دونوں کا ایک ہی جواب, اور وہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار ہمارے اور آپ پر. اگر ہم اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو ٹائم سے پہلے انجام دے دیں, امام وقت سے پہلے آ جائیں گے, اور اگر ہم اس وقت تک جو ظہور کی تاریخ ہے اس وقت تک بھی اپنی ڈیوٹیز کو انجام نہ دیں تو امام کا ظہور 50 سال اور ڈیلے ہوگا. اور یہی جملہ امام نے کہا تھا شروع زمانے میں کہ چونکہ ہمارے ماننے والے اپنی ذمہ داریوں کو اس تاریخ تک پورا نہ کر سکے, اس لیے اللہ نے میرے بیٹے کے ظہور میں ڈیلے کر دیا. میں نے کہا کہ وہ بہت پرانا مسئلہ, اس کا ہم سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں, لیکن بات یہی جا کے بنتی. اور یہاں پہ ایک نقطہ اور سنی, اور اس کے بعد باقی باتیں کل. میں دو موضوعات کو لے کے آگے چل رہا ہوں, مگر جیسے جیسے اب یہ مجالس آگے بڑھیں گی مختار نامے کا ٹائم بڑھانا پڑے گا, پہلے موضوع کا وقت کم کرنا ہوگا. ابھی تقریباً میں برابر برابر ٹائم دے رہا ہوں. اب ایک آخری بات ظہور امام کے ریفرنس سے اور سن لیجئے, اور اس کے بعد پھر اسی سے ہم مختار نامے کے اپنے موضوع کو آج ذرا سا تیز اور ذرا سا فاسٹ کریں گے. اور وہ آخری بات یہ کہ مسئلہ صرف اتنا بھی نہیں کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں اور اپنی ڈیوٹیز انجام دے دی, امام جلدی آ گئے, اور اگر اس کو انجام نہیں دیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, امام نے ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو چیک کیا, پتا چلا کہ ہمارے شیعوں نے وہ ٹاسک پورا نہیں کیا جو ان کو دیا گیا, تو امام ڈیلے آنے میں ڈیلے کر دی. خالی اتنی سی بات بھی نہیں, اپنا ایک اور نقصان اور بہت بڑا نقصان وہ یہ کہ جتنا دیر کر کے ہم امام کو بلائیں گے اتنا ہی ہماری زندگیاں خطرے میں, ہماری عورتوں کی عزت و آبرو خطرے میں, اور ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں. ایک واقعات کا فلو بہ رہا, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا دنیا کے اندر مختلف قسم کے پرابلم پیدا ہوں گے. دیکھیں کچھ پرابلم وہ جو اینٹی اسلام ایلیمنٹس پیدا کر رہے ہیں, مثلا لاسٹ سینچری ہمارے سامنے تین بڑے فتنے پیدا کیے, اور یہ ظہور امام کی نشانیوں میں ایک نشانی. کیا نشانی؟ کہا کہ سچا امام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ ایٹ لیسٹ 30 جھوٹے امام امامت کا دعویٰ نہ کرے, اور سچا امام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس سے پہلے بھی دجال نہ آئے اور اس کے بعد بھی دجال نہ آئے. دجال خود ایک بہت اہم موضوع, مگر بہت ہی مختصر کر کے یہ کہوں کہ لاسٹ سینچری اینٹی اسلام طاقتوں دنیا میں تین فتنے پیدا کی, اور ہر علاقے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے عرب اور خاص طور پر نجد اور حجاز کے رہنے والے عرب بڑے اکھڑ, بڑے بد اخلاق, बड़े बदतमीज बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लठ रस्सी कर रहे हैं। वहां पे वहाबियत नामी फिरके को पैदा किया गया, वहां पे उसकी बुनियादें रखी गई। वहाबियत वो फिरका ये जिसके पास ना रहम, ना हमदर्दी, ना शफकत है, ना मेहरबानी, ना अखलाक है। सही बात भी अगर कभी करते तो इतनी बदतमीजी के साथ करते हैं कि सुनने वाला एलर्जिक हो जाता, एक जिद पैदा हो जाती। आप देखें उनका अंदाज। और ये कौम का अपना मिजाज ऐसा था, राज्य वाला फिरका जिसकी बुनियाद इस पर रखी जाए यहाँ पैदा करो। चुनाचे वहाबियों का एक मशहूर मसाला था, आजकल वहाबियत ने जो कि हज को प्रोपेगेंडे का एक जरिया बना लिया, वरना इससे पहले उनका मसाला ये था कि कुरान और दुआएं जितनी खराब से खराब आवाज में पढ़ी जा सकती है पढ़ना जरूरी है। वही एक अंदाज है जो बद अखलाकी और बदतमीजी। आज हमारा टॉपिक वहाबियत नहीं, हमारा टॉपिक ये कि आप देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाके, यहाँ पे एक झूठे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सामने लाया गया और यहाँ के हालात की वजह से यहाँ के लोगों की जईफुल एतकादी से फायदा उठाकर कादियानियत के इतने बड़े फितने को इस्लाम पर मुसल्लत किया गया। ये बाकायदा हमारे मर्जे मरहूफ आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम की बड़ी मशहूर बद्दुआ जो उन्होंने 1970s में इनको दी और 74 इसका नतीजा हमारे सामने आया। और ईरान के इलाके में बाबी और बहाई मजहब इस फितने को सामने लाया गया और ये वो फितना था कि जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि पहले आदमी ने आकर कहा था कि मैं जमाने का इमाम हूं और फिर वहां से बात आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि अल्लाह मेरे अंदर उलूल करता। एक बहाई मजहब, एक कादियानी मजहब, एक वहाबी मजहब, ये लास्ट सेंचुरी में हमने देखा कि मुसलमानों के बीच में तीन मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की नेचर को देखते हुए तीन अलग किस्म के मजहब बनाए गए। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, अब मुसलमान एक दूसरे के और करीब आ गए। चुनाचे इस सदी में तीन नहीं वो एक फितना बनाया जाएगा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाइपलाइन के अंदर है, उसके आसार सामने आ रहे, एक ऐसा नजरिया हमारे सामने आने वाला जो तमाम मुसलमान फिरकों को एक साथ हिला के रख देगा और शायद यही वो फाइनल दज्जाल हो कि जिसके बारे में रिवायत आई कि इमाम से पहले एक दज्जाल आएगा और इमाम के बाद एक दज्जाल आएगा। मगर इस मौके पर भी अगर हम न रुके और हमने अपनी जिम्मेदारी अदा न की तो याद रखिए कि अभी तक अकीदों को खराब किया जा रहा, अब इसके बाद जिंदगियों से खेला जाएगा। वो मशहूर हदीस दोबारा दोहरा रहा हूं, एक हदीस फरमाते हैं कि मेरे बेटे के जाहिर होने से पहले इस दुनिया में इतनी कत्ल व गारत गरी होगी, ऐसी खूनरेजी होगी, आपस में ऐसी तलवार चलेगी, ये सारी दुनिया उसकी लपेट में आएगी और 1/3 दुनिया इस आलमी जंग के नतीजे में मारी जाएगी। देखिए 1/3 बहुत बड़ा फिगर, आज तक हजरत आदम से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार को शामिल करते हुए दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं कि जहां 2%, 3%, 4% से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हुई। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, बड़ी मशहूर जंगे, लेकिन इसमें टोटल कैजुअल्टी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन के एतबार से 1% भी नहीं बनते और ये 33% का आदद आ रहा। और एक रिवायत में नहीं आया, बार बार आया, मसलन उस एक रिवायत में भी आ गया जिसका जुहूर इमाम से कोई ताल्लुक नहीं था। याद है कि जब मेरा पांचवा इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि अफजलुस्सलाती वस्सलाम बाद हालात के तहत शाम के एक इलाके से गुजर रहे तो पता चला कि यहाँ पे एक पहाड़ी ऐसी जिसमें एक ऐसा राहिब रहता क्रिश्चियन रहनुमा जो साल में सिर्फ एक मरतबा बाहर आता और इंतहाई पोआस व मुतफिक। बहरहाल वो पूरा वाकया नहीं दोहराना वरना इतना इंटरेस्टिंग वाकया कि 10 मिनट उसमें लग जाएंगे। खैर वो राहिब इमाम से वो मुलाकात करता और कुछ सवाल करता, यही सवाल बाद ताऊस यमानी ने मदीने में भी इमाम से किए और उनमें सवाल ये था, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल थे। एक सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा दिन जिस दिन दुनिया की एक तिहाई आबादी मारी गई। ईसाई राय अपनी किताबों की मदद से कह रहा बाइबल की आखिरी बुक जिसका नाम है रिविलेशन या मुकाशफा, उसमें ज़ुहूर ईमान की बहुत सारी निशानियां, उसमें से कुछ मैंने वहां पढ़ी थी जहां मेरा मौजू ज़ुहूर ईमान था। यानी आज तो ये बताना कि जिम्मेदारियां कैसे अदा की जाती, उसमें मुख्तार का वाकया है, पहले अपने हवाले से बात सुनी। तो आप बाइबल पढ़े हुए था, ओरिजिनल बाइबल, सवाल करता कि दुनिया की तारीख में वो कौन सा दिन जब वन थर्ड दुनिया एक दिन मारी गई। इमाम ने फरमाया कि आज तक वो दिन नहीं आए। आज तक जो मैक्सिमम 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 आदमी मारे गए वो 25%, एक चौथाई, क्वार्टर, और वो भी किस तरह, जिस दिन दुनिया में सिर्फ चार आदमी थे, आदम थे, हव्वा थी, हाबील थे, काबिल मलून था, और चार में से एक काबिल ने जनाबे हाबील को शहीद कर दिया, एक आदमी मारा, एक आदमी शहीद हुआ था, वो 25% दुनिया की आबादी मारी गई। वरना अब तक इससे ज्यादा मौत कभी नहीं हुई। हाँ, जब आखिर में मेरा बेटा जाहिर होने वाला होगा, उससे पहले दुनिया का 1/3 आपस की जंगों के नतीजे में मारा जाएगा। 1/3 कम नहीं होता, कभी गौर करें। अगर इस वक्त दुनिया की आबादी 6 बिलियन, तो 2 बिलियन इसमें जंगों में मारे जाएंगे, मगर नहीं, अभी और मरेंगे। मौला का फरमान दोहरा दो, फरमाया अल-मौततान, अल-मौततुल हमरा वल-मौततुल बैजा। मेरे बेटे के आने से पहले दुनिया में 2 मौतें आएंगी। पहली मौत सुर्ख रंग की मौत, रेड कलर की मौत, रेड डेथ, और उसके बाद सफेद मौत, व्हाइट डेथ। अल मौततुल हमरा वल मौततुल बैजा। एक और इमाम ने मुजक्कर के सीगे के साथ फरमाया अल मौतुल अहमर वल मौतुल अबियस। ये सारे रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूँ कि किसी एक इमाम की हदीस नहीं, तकरीबन हर इमाम ने इसको रिपीट किया। फरमाया एक सुर्ख मौत, एक सफेद मौत, मौला ये रेड कलर की डेथ क्या होती, क्या ये तलवार चलेगी, फौजें एक दूसरे पे अटैक करेंगी, इस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, कि जिसके नतीजे पूछा गया मौला कैसे हथियार, क्या ऐसे धमाके की आवाजें आएंगी कि खाली कान में पड़ने से आदमी बहरा होगा, आदमी को ऐसा लगेगा उसका गला घुट रहा, उसे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसके दिल को पकड़ के हाथों में दबाया। अजीब और गरीब इमाम के हथियार बता रहे, जहाँ कहीं न्यूक्लियर वीपन इस्तेमाल हुए, एक ही इलाका था हिरोशिमा, या केमिकल गैसेस इस्तेमाल की गई, वो तो ईरान और इराक जंग, कितनी मरतबा ईरान के साहिबान ईमान पे इस्तेमाल की गई, उनसे पूछी मौला जो निशानियां बता रहे हैं वो सब किस किस्म के वीपन से पूरी उतर रही। मगर इमाम फरमाते कि इसके नतीजे में 1/3 दुनिया मरेगी, और यह है सुर्ख मौत, खून बह रहा, गर्दने कटी, लाशें पड़े, मगर इसके बाद कहा कि 1/3 दुनिया और मरेगी। यानी अगर 6 बिलियन है तो 2 बिलियन पहले मरे, 2 बिलियन उसके बाद मरे, और इसे इमाम ने कहा सफेद मौत। मौला ये कौन सी मौत, ये कैसे आएगी? कहा कि पहली मौत के नतीजे वर्ल्ड वार हो, ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल हो, इसके नतीजे जंग खत्म होने के बाद भी आफ्टर इफेक्ट इतने सख्त होंगे कि जमीन से कोई गल्ला नहीं होगेगा, और ऐसी बीमारियां फैलेंगी जो नई नई होंगी, जिसका इलाज भी उस जमाने की साइंस के पास नहीं होगा, जिसके नतीजे में 2 रीजन, एक कहे खाने को नहीं, और दूसरा नई किस्म की बीमारियां, 1/3 दुनिया और मरेगी। हर तरफ कफन, हर तरफ कफन, हर तरफ कफन नजर आएंगे, इसे सफेद मौत का आ गया। 6 बिलियन में से 4 बिलियन मर रहे, और इसके बाद इमाम आ रहे, रावी ने कहा मौला हम क्या करें, कहा तुम कोशिश ये करो कि रिमेनिंग 2 बिलियन में तुम्हारा शुमार, अगर ये वक्त तुम्हारे सामने आ जाए, ये बहुत आखिरी लफ्ज ज्यादा अहम है, अगर ये वक्त तुम्हारे सामने आ जाए, इस जुमले को समझिए, इस जुमले का मतलब ये कि अगर तुम लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो तो इमाम इस साइन के जाहिर होने से पहले आ जाएंगे। कल भी आपने सुना, आज भी आपने सुना, आज आखिरी बार सुना कि साइन ऑफ जुहूर से पहले इमाम आ जाएंगे। चले वो सूरज मगरिब से निकल रहा हो, चले इसके अंदर इमाम बाद में आ जाए, गुजराती मुहावरा है कि कोई बांधा नहीं, या अंग्रेजी में कि नो प्रॉब्लम, चले वो वाली साइन हम बर्दाश्त कर लो। एक साल वेदर के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाएगी, सर्दी में गर्मी आएंगी, गर्मियों में सर्दियां आएंगी, अटम में मसलन स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग में अटम आएगा, जब बारिशें होना चाहिए तो नहीं आएंगी, जब नहीं होना चाहिए बारिश, बड़ी गड़बड़ होगी, पूरा वेदर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। चले हमने कहा नो प्रॉब्लम, अगर उससे पहले इमाम आए उसके बाद इमाम आए हमारे लिए बराबर। चले जिस दिन मसलन सूरज आसमान पे रुक गया, हमने कहा उससे पहले इमाम आए उसके बाद, मगर ये जो टू थर्ड दुनिया मरने वाली है इसमें ये जुमला नहीं चलेगा कि नो प्रॉब्लम या कोई वादा नहीं है, वादा है, प्रॉब्लम है। अगर टू थर्ड दुनिया मरने के बाद इमाम आए तो हमें क्या पता हम किस तरफ होंगे, इसमें तो हमारे लिए बेहतर कि इमाम इससे पहले आ जाए, और वो आपने कल भी सुना और आज भी सुना, ये हमारे अख्तियार में, ये हम कर सकते हैं अगर हम चाहें और अपनी सारी जिम्मेदारियां ड्यूटी अंजाम दें। अब वो क्या जिम्मेदारियां, बहुत ही मुख्तसर एक जुमला सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना कि आज का डेमोस्ट्रेशन बड़ा कामयाब रहा, काफी बड़ी तादाद में साहिबान ईमान ये टोरंटो के मोमिनी यहाँ के पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने फकत अपने जज्बात का इजहार करने पहुंची, उलमाए कराम की हाजिरी भी थी, खवातीन भी तशरीफ लाई, बच्चे भी आए थे, ये छोटे पैमाने पे अपनी एक जिम्मेदारी अदा की गई। मगर इस तरह से और कितनी जिम्मेदारियां हमें इस्लाम ने खैबत के लिए बताई। अब अगर आप ये कहें कि मौलाना हम अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, हमारे मराजे तो पूरी कर रहे होंगे, अल्लाह उनकी दुआ क्यों नहीं कबूल कर रहा, इसके लिए आज मैंने सूरह अनफाल की एक आयत शुरू मजलिस में पढ़ी, वत्तकू फितना, कुरान कहता है कि जब इज्तिमाई काम होता तो दो आदमी और तीन आदमियों की जिम्मेदारी अदा करने से काम नहीं चलता, वत्तकू फितना, उस मुसीबत और फितने से अपने आप को बचाओ कि जब वो आएगा तो उसकी लपेट में खाली जालिम नहीं आएंगे, जालिम और मजलूम सबको उसकी लपेट में आना पड़ेगा, जिसे पैगंबर ने उस मिसाल से समझाया कि अगर एक कश्ती जा रही और एक स्टीमर जा रहा और एक आदमी अपनी सीट पर उस कश्ती में सुराख करे और वहां से पानी आने लगे तो खाली जो जालिम है वही नहीं डूबेगा, उसका नुकसान पूरे कश्ती वालों को और पूरे शिप वालों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दो आदमी, चार आदमी, छह आदमी आखिरत तो अपनी बना सकते हैं, पर चीजें सब बेनमाजी है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, पर चीजें के सारी औरतें बेहिजाब है, हमारी बहन हिजाब कर रही है, पर चीजें के सारे बच्चे गाना सुन रहे, हमारे बच्चे अपने आप को बचा रहे हैं। हो सकता है कि इंडिविजुअल अगर कोई इस्लाम पे अमल करे आखिरत तो अपनी बना सकता है, मगर दुनिया बनाने के लिए इंडिविजुअल काम से काम नहीं चलेगा, पूरे माशरे को मिलकर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी चेंज आती है। जैसे मुख्तार का वाकया, मुख्तार का वाकया दो चीजें, नंबर एक मुख्तार के जमाने के साहिबान ईमान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ये नहीं कहा कि हुसैन मारे गए तो हुसैन का बेटा सज्जाद इंतकाम ले, ये नहीं कहा हुसैन मारे गए तो परवरदिगार ने हुसैन के वारिस आखिरी इमाम को रखा, हम अपनी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, ये नहीं कहा। सज्जाद अपना फरीजा अंजाम देंगे, आने वाला इमाम अपना फरीजा अंजाम देगा, मगर हम भी तो शिया हैं, हम भी तो हुसैन का नाम लेते हैं, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, आंसू बहाना पहली जिम्मेदारी है, इन आंसुओं के बाद आगे बढ़कर ये देखो कि हुसैन के कातिल कौन है, और जितना तुम कर सकते हो वो सर्विस अंजाम दो। अगर अगर कोई आदमी मुख्तार के पास खत पहुंचा सकता है वो खाली ये काम करे, अगर कोई मुख्तार को कैसे रिहा करा सकता है वो ये काम करे, अगर कोई मुख्तार के साथ मिलकर तलवार चला सकता है वो ये काम करे, सबने अपनी जिम्मेदारी अंजाम दी। वहां पे ऐसा नहीं था कि लोगों ने कहा कि मुख्तार जब ये जिहाद कर रहे हैं वो करे, हमने कहा नायब इमाम ये काम करे करे, उलमा ये काम करे करे, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो, नहीं, सब बराबर से आगे बढ़े। नतीजा क्या निकला जो आप संडे से सुनेंगे, नतीजा संडे से निकलेगा, उमर साद मारा गया, शिमर मारा गया, हकीम इब्ने तुफैल मारा गया, खूली मारा गया, सनान मारा गया, एक एक कातिल को, हत्ता खाली कातिल नहीं, जियारत वारिसा के जुमले पर मुख्तार ने पूरा पूरा अमल किया, लअनल्लाहु उम्मतन कतलत का कातिलों को भी मुख्तार ने जहन्नम वासिल किया, लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का जालिमों को भी मुख्तार ने जहन्नम वासिल किया, लअनल्लाहु उम्मतन समयत बे ज़ालिक फ़रज़ियत बे, उन लोगों को भी वासिल जहन्नम किया जो न कत्ल इमाम में शरीक थे न जुल्म में शरीक थे मगर खाली इस वाकये पे राजी रहे थे, राजी रहे थे। ये कैसे पता चला, मसलन इमाम मजलूम की सवारी का एक जानवर जुलझना, उसने तो दरियाए फरात में अपने आप को गिरा के शहीद कर लिया, ذوالجناح میدان کربلا سے پہلے تو خیموں میں آیا تھا سیدانیوں اور بچیوں کو خبر دینے کہ تمہارا بابا مارا گیا اور پھر واپس میدان میں گیا اور 30 سے زیادہ عمر سار کے سپاہیوں کو اپنے ٹاپوں تلے کچل کے ہلاک کیا تھا اور آخر میں اپنے آپ کو دریائے فرات میں گرا دیا۔ مگر کربلا میں حسین فوڈ بھی لے کے گئے، بلکہ جب عاشور کی صبح آئی تھی تو میرے مظلوم آقا نے جو صبح سے ذوالجناح پہ سوار تھے جنگ شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ دینے کے لیے حسین گھوڑے سے اترے تھے اور عباس سے کہا تھا میری سواری کا اونٹ لاؤ، یہ خطبہ اونٹ پہ چڑھ کے دیا تھا۔ اب علماء نے کہا کہ اس کی کیا وجہ، 3 باتیں سمجھ میں آ رہی اور شاید تینوں صحیح، کیونکہ سیرت رسول میں یہ ملتا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ اونٹ پہ خطبہ دیتے اور اگر کہیں اونٹ نہ ہو تو پالان شتر کا ممبر بنا لیا کرتے، مگر وہ بھی پالان شتر ہی کا ممبر ہوتا تھا، ایک سنت رسول۔ نمبر 2، گھوڑے کے مقابلے میں اونٹ ذرا اونچائی کا جانور، وہ تو حسین تھے اس لیے، اور میں چونکہ خادم حسین ہوں اس لیے میں نے اونچے ممبر کو بدل کے نیچا ممبر منگوایا، آپ نے ممبر کی تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ مگر 30,000 کے لشکر جرار سے خطاب کرنا، یہاں تو مشکل سے 40 یا 50 مومنین، بہت ہوئے تو 100 آتے ہیں، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی میں فقط اس لیے کہ خواہش ہے بانیان مجلس کی تو آخری سیڑھی پہ بیٹھا ہوں، ورنہ تو پہلی سیڑھی سے بھی کام چل جائے۔ مگر تیسری اور بہت اہم وجہ کیا، عرب میں گھوڑا جنگ کی نشانی اور اونٹ امن کی نشانی، حسین نے خالی سواری کا جانور نہیں بدلا، اس عمل سے یہ پیغام بھی دیا کہ ہم اتل امکان جنگ سے بچنا چاہتے ہیں اور صلح و امن کی بات کرتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو قربان نہیں کریں گے۔ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قربان کریں، لیکن ہاں اتل امکان ہم جنگ کو حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو سواری کا جانور کربلا کے میدان میں، یہ اونٹ ذوالجناح نے اپنے آپ کو شہید کر لیا، مگر اونٹ پسر سعد نے گرفتار کیا، اور جب شہر کوفہ میں داخل ہوا تو اس اونٹ کو ذبح کیا گیا، جسے شریعت میں کہتے ہیں نہر کرنا، اور اس کا گوشت مختلف گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ گھر والوں نے منع کر دیا کہ ہمیں یہ گوشت نہیں چاہیے، اور کچھ گھر والوں نے یہ گوشت لے کے رکھ لیا۔ مختار نے کہا کہ منع کرنے والوں نے منع کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حوالے سے اتنے زیادہ کا کوئی حکم نہیں تھا، کوئی آدمی منع بھی کر سکتا، تو جنہوں نے لے لیا گوشت لے لینا دلیل اس بات کی ہے کہ سمیت بے ظالے فرضیت بے کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مختار نے انہیں بھی سزا دی تھی، قاتلوں کو بھی، ظالموں کو بھی۔ امام مظلوم کی سواری کا گوشت، اس اونٹ کا گوشت جس گھر میں گیا گھر والوں کو بھی۔ اتنا بڑا جہاد کہ کوفے کے اندر میجوریٹی یزیدیوں کی آئے، اور اس کے بعد مختار انہی کے درمیان بیٹھ کر انہی کو سزا دے رہے، البتہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ کیسے یہ ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ کم از کم جتنے صاحبان ایمان تھے وہ سب مختار کے ساتھ مل گئے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو دیکھ رہا، مگر سب سے پہلا نام کوفے کے ایک انتہائی بوڑھے آدمی کا رہا، جس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ مجھ جیسا معاملات سے دور رہنے والا، اور اب تو اس بڑھاپے میں آ گیا ہوں، اللہ مجھ سے بھی اتنا بڑا کام لے گا کہ فقط اس ایک کام کی وجہ سے میں 80 سال کا بوڑھا آدمی ہمیشہ ہسٹری کی کتابوں میں میرا نام آ گیا، اور محبان اہل بیت کی لسٹ میں میرا نام آیا۔ لیکن جیسے مختار کے لیے میں نے 2 دن ایک جملہ کہا کہ ایسا لگتا کہ اللہ نے مختار کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا، جب وہ جہاد شروع ہوا وہاں سے مختار لائٹ میں آیا، جہاد ختم ہوا مختار شہید ہو گئے۔ اسی طرح یہ بوڑھا آدمی 80 سال عمر ہے، اس سے پہلے کے 79 سال کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہا، اور جیسے ہی 80 سال میں ایک کام کیا اس کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں چلا گیا، لیکن اہم کام کیا، اور وہ یہ کہ مختار ابن زیاد کے دربار سے قید کر کے جیل میں ڈال دیے گئے۔ کل جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے بات۔ ویسے تو عمر ابن حارث کی وجہ سے پناہ مل رہی تھی، مگر ان عورتوں نے آ کے سارا کام خراب کر دیا، مختار گرفتار کیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، اور یہ اسپیشل جیل، کوفے کی ایک عام جیل بھی مگر یہ اسپیشل جیل، اس جیل کے اندر چوری کے مجرم نہیں جاتے ہیں، ڈاکے کے مجرم نہیں جاتے ہیں، قتل کے مجرم نہیں جاتے ہیں، اس میں جانے کے لیے صرف ایک سزا، ایک گناہ ہونا چاہیے، کہ اگر پتا چلے کہ اس آدمی کے دل میں علی کی محبت، या खास महिमा ने अहले बैत कीजिए। आज आप टोरंटो में रहने वाले, शहर टोरंटो शहर जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के अंदर, और जमीन के नीचे जो शहर है वो जमीन के ऊपर वाले शहर से ज्यादा अच्छा लगता, खूबसूरत भी लगता, बारौनक भी लगता, मजा भी वहां पे ज्यादा आता। जैसे कि बाहर को वेदर परेशान कर देता तो सारे मुहावरे गलत हो गए। ये याद करो, एक दिन जमीन के नीचे जाना है वहां क्या करोगे? जिन्होंने टोरंटो की अंडरग्राउंड जमीन देखी हो तो कहेंगे बहुत मजे की चीज होती है खबर, तो ऐसी होगी ना खबर। जमीन के अंदर तो यही होता है ना, बेहतरीन दुकानें हैं, बेहतरीन खरीदार हैं, हर किस्म के नजारे हैं। ये तो शहर ऊपर जमीन के ऊपर से बेहतर जमीन के नीचे, मगर आज का टोरंटो अलग, 1400 साल पहले का कूफा अलग था। न वहां की कोई इंजीनियरिंग काम की थी, ना आर्किटेक्ट, एक घड़ा सा बनाया गया और वो इतना जमीन के नीचे था। ये बात रिवायतों में है कि वहां तक जाने के लिए 200 स्टेयर उतरना पड़ते चुनाचे। लेकिन आज समझ में नहीं आएगा बच्चों को, कहेंगे तो क्या हुआ, एस्केलेटर लगे होंगे, बड़े आराम से लोग चले जाते होंगे। बच्चे तो अपने माहौल के एतबार से हर बात करेंगे ना। 200 सीढ़ियां, न कभी ताजा हवा वहां पहुंची, न कभी सूरज की रोशनी वहां पहुंची। जिस वक्त मुख्तार को कूफे की हुकूमत मिली, अभी जो वाकया चल रहा है इसके 3 साल बाद, तो पहला काम यह किया था इस जेल को तोड़ा, और 4500 ऐसे मुहिमान अहले बैत सामने आए कि जिनके रिश्तेदार भी आज तक हैरान थे, यारे हमारा बाप कहाँ चला गया, हमारा चचा कहाँ चला गया, पता चला यहाँ खबर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वारंट भेज कर मुजरिम को बुलवाया जाता, कोई केस चलता है या पब्लिक के सामने उसे जेल में डाला जाता। थोड़ी बहुत इसकी मैं मिसाल यूं दूं, थोड़ी बहुत, आज से 11 साल पहले जब गल्फ वार के अख्तिताम पर इराक में एक अपराइजिंग हुई थी, तो वहां भी सबसे पहला काम यह किया गया था कि कर्बला और नजफ की जो जेलें थी उनको तोड़ा गया था। और बड़े अजीब अजीब और बड़े ट्रेजिक किस्म के सीन उन जेलों के हवाले से बाहर आए थे। मैं कैसे वो जुमले दोहराऊं, शर्म हया इजाजत नहीं देती। ये सद्दाम की जेल 91 में जो तोड़ी गई, उसके अंदर एक हिस्सा औरतों का, जेल तोड़ी गई, औरतें बाहर आने को तैयार नहीं। क्यों? कहा कम अज कम कोई लिबास तो भिजवाओ, इस जेल में सर से पैर तक, और बड़ी यानी जो बेहिजाब औरतें, जो गुनाहगार औरतें, जो मिनी स्कर्ट पहनने वाली औरतें, जो शराब पीने वाली औरतें, वो तो सब सद्दाम के साथ। यहां तो वो थी कि वाकान उनके दामन को कभी फरिश्तों ने भी नहीं देखा। मैं इससे ज्यादा कहता नहीं हूं, मेरी तो बहरहाल गालिम कसल भी तौहीन बनेगी उन मोमिना और सैदानियों, मगर दुनिया में जब कभी कोई इंकलाब आता तो खाली सद्दाम की जेल नहीं टूटती, हमेशा जेल टूटती। जब फ्रांस का रेवोल्यूशन आया, वो भी आया था कि वो जब पेरिस के करीब बास्टल की जेल तोड़ी गई, और हज्जाज इब्ने यूसुफ जब मरा उसने भी एक जेल बनाई जिसमें 1,20,000 शियाने हैदर कर्रार थे, 70,000 के जिस्म में लिबास नहीं। मगर सबसे पहली जेल जो तारीख में टूटी वो ये इब्ने ज़ियाद वाली जेल, और वही तरीका था जो सद्दाम ने बाद में अख्तियार किया। सद्दाम ने मुआविया, यजीद और इब्ने ज़ियाद की सीरत को बहुत गौर से पढ़ा और बाकायदा उनसे उसने ट्रेनिंग ली। जिस वक्त सद्दाम की जेल टूटी, क्योंकि ये हमारी करंट हिस्ट्री है इसलिए मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, ये आप में से हर एक को पता होगा, तो इब्ने ज़ियाद समझ में आएगा। पता चला कि ऐसे ऐसे लोग वहां से निकले कि उनके घर वाले हैरान थे, परेशान थे कि हमारा वो रिश्तेदार कहाँ गए। तरीका यही रात में होता था ना, और अब तक होगा। रात का वक्त दरवाजे पे नौक थी, घर वाला दरवाजे पे गया, अब घर की औरतें इंतजार कर रही हैं कि आगे बताएंगे कौन आया। भाई पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, आसमान खा गया कि जमीन निकल गई कि हवा में उड़ गया, दरवाजा खोला इसके बाद कोई खबर नहीं। बच्चों के लिए कोई आदमी दूध लेने निकला, अब घर वाले इंतजार कर रहे हैं, बच्चा भूख से तड़प रहा है, अब दूध आए खाए, पता ना चला कहा। और जब ये जेल टूटी तो ये सारे लोग वहां से निकल के आए। एक बात सुन लीजिए कि अगर किसी की मौत हो जाए तो आदमी को सब्र आ जाता, लेकिन ना जिंदगी ना मौत, ना ये पता हो कि जिंदा है, ना ये पता हो कि मुर्दा, वे अजीब कैफियत होती। खुदा किसी पे ये वक्त लाए नहीं, जिन पे आया उनसे पूछिए क्या हालत है। औरत अपने आप को शौहरदार भी समझ रही है और बेवा की मानिंद हो चुकी, बच्चे यतीम भी है और यतीम नहीं भी, घर वाले बेसहारा भी है और घर का सहारा है भी। अब इब्ने ज़ियाद की जेल जब टूटी, ऐसे ऐसे लोग निकल के आए, उनके घर वाले हैरान थे कि आप कहाँ थे, हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक गए, कुछ ये समझे थे, इसीलिए कहा गया कि मोमिन के बारे में बदगुमानी फौरन अपने दिल में ना लाओ। यानी बहुत से लोगों का देखकर उनके दोस्तों ने कहा अच्छा आप इस जेल में थे, करबला के 5 साल बाद ये जेल टूटी, हम तो समझे थे कि करबला का वाकया जब करीब आ रहा है और आका हुसैन कूफे की जाने आ रहे हैं, हम ये समझे थे कि आप लड़ना नहीं चाहते, जान नहीं देना चाहते, तो रातों रात इसलिए आप गायब हो गए। आज तक हम ये सोचते आ रहे थे कि हमारा दोस्त हुसैन को छोड़ के चला गया, भाग गया, फरार इख्तियार कर गया, छुप गया। हमें क्या पता था कि आप इस जेल में कितने ऐसे लोग निकले थे, मगर 5 साल बाद निकले। अभी तो ये इतना सख्त जेल खाना कि जो आदमी इसके अंदर गया इसमें से जिंदा कोई नहीं आया, सिर्फ एक आदमी इसमें से जिंदा निकला और वो मुख्तार। और बस उन्हीं का जिंदा निकलना इस कैद खाने के टूटने का सबब बना। मगर मुख्तार इस तरह से जिंदा नहीं आए कि आज उनको जेल में डाला गया, कल उन्होंने कोई जादू पढ़ा, कोई छूमंतर किया, कोई दुआ पढ़ी, लोगों की आंखों में पर्दा आ गया और मुख्तार जेल से निकल गए। नहीं, बड़ी मेहनतें और कोशिशें करना पड़ी। वो किस तरह अब मुख्तार जेल में गए, इतना अंधेरा है कि वाकान वहां हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। अच्छा, इंसान बहुत ज्यादा अंधेरे कुछ अरसे रहे तो थोड़ा बहुत उसकी आंख आधी होती, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और मुख्तार को बाकी सारे कैदियों के मुकाबले में और ज्यादा सख्ती के साथ रखा गया था। बाकी कैदियों को तो 200 स्पीयर नहीं थी, ना हवा आए ना सूरज की रोशनी। वहां के कैद खाने में इस तरह रखा गया कि प्रॉपर खिजा भी नहीं मिल रही, मगर ऐसा कैद खाना जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। मुख्तार को वहां गले में तौक डाला गया, हाथों में हथकड़ी पहनाई गई, पांव में बेड़ी पहनाई गई और कमर में इतना वजनी एक वेट बांध दिया गया कि मुख्तार अपनी जगह से हिल भी ना सके। बाकी कैदियों को वो छोटा सा कमरा था, लेकिन उसके बाद हथकड़ी बेड़ी की जरूरत क्या, वो चारों तरफ से बंद, उसके निकलने का रास्ता फकत एक स्टेयर, उसमें 10 दरवाजे, एक भी नहीं 10 दरवाजे। मगर मुख्तार को खाली कैद नहीं करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुल्म भी करना, क्योंकि दरबार में इब्ने ज़ियाद को थ्रेट करके आए। हाँ, सिर्फ एक दिन मुख्तार को इस जेल से निकाला गया, वो भी बड़े अर्ली स्टेज में, जिस दिन सैदानिया दरबार में लाई गई, वो मसाइब आप सुन चुके। फिर दोबारा मुख्तार गए और मुख्तार को खाने और पीने के लिए भी तारकोन, वो चीज के जिससे सड़कें बनाई जाती, ये पिघला पिघला के इनके खाने में डाल के इनको खिलाया जाता। बड़ी अजीब हालत है वहां पे, लोग सिर्फ चलते फिरते एक दूसरे को फील करते, नजर तो कोई नहीं आता। इतने दिनों रहने के नतीजे में बहुत हल्का सा एक शैडो सा नजर आता। मुख्तार इसी हालत में बैठे, एक मुख्तार ने देखा कि कोई आदमी मुझे ढूंढता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे आ रहा। ढूंढने का मतलब क्या, जो मैं जब आगे बढ़ता लोगों से टकराता, 4,500 आदमी है, जगह छोटी, तो लोग कहते भाई कहाँ जा रहे, यहीं बैठ जाओ। वहां पे ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बहुत बड़ा रास्ता गया है, कोई यंग स्ट्रीट गई है कि आदमी वॉकिंग करने जॉगिंग करने जा रहा। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, पता नहीं तुम्हें कि पूरा फुल कैपेसिटी यहाँ पे एक रहो। हमारी मजलिसों से तो फिर भी जेल खाना अच्छा है कि पूरी कैपेसिटी होती, हम तो मजमे ही को ढूंढते रहते। खुलासा ये, कहाँ जा रहे, यहीं बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं मुख्तार के पास जा रहा हूँ। अपना नाम सुना मुख्तार, फिर वो आदमी आगे बढ़ा, फिर जिनसे टकरा गया उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो। भाई एक कमरा है, इसके अंदर ना कोई चीज देखने की ना घूमने की, कहाँ घूम रहे हो। चलो यही कह दे कि खाना खाया है, जरा टहल रहा हूँ ताकि खाना हजम हो जाए, कल मुख्तार के पास जा रहा हूँ। अब मुख्तार हैरान है कि मुझे कौन ढूंढ रहा, या मेरा पता मेरा नाम किसके पास, हर आदमी अपने हाल में पड़ा हुआ, वो मेरे करीब है। कहा मुख्तार मैं खास इसलिए तेरे पास आया हूँ कि अगर के तू जानता है, मगर तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ, तू डिस्करेज ना होने पर, डिमोरलाइज ना होने पर, तेरा हौसला पस ना होने पर। मुख्तार ने एक मरतबा घबरा के कहा तू है कौन। बहरहाल मुख्तार का अपना एक स्टेटस था और 60 साल की उम्र, आने वाला इस तरह बात कर रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी छोटे से बात करता। कहा मैं अली का खास शागिर्द मीसा में तम्मार, मीसा में तम्मार आप यहाँ पे हैं। मुख्तार भी घबरा गए, मुख्तार को पता है कि मीसम का रुतबा मुझसे बुलंद है, आप यहाँ हैं, हम तो आपको तलाश कर करके एक मरतबा घबरा के सोच रहे थे कि मीसम तो हुसैन को छोड़ के जाने वाला नहीं, वो कहाँ गायब हो गए। मीसम भी उन्हीं लोगों में से ऐसे कि एक दिन कूफे में रह रहे, अगले दिन पता चला कि मीसम नापैद, मीसम कहीं मिल ही नहीं रहे, रातों रात गायब हो गए। आजकल जो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और स्पेशली मुसलमान कंट्रीज में देखते हैं कि रात को पुलिस आती आदमी गायब हो जाता। ये सारा सिलसिला कायम किया हुआ है हाकिम शाह, उसके बेटे यजीद और यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद का। हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। क्या मुख्तार, मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं, ये तो बहरहाल शहीद कर दिए गए थे बहुत जल्द, मीसम एतम्माद ये भी जल्द से जिंदा नहीं निकले। क्या मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे मौला ने मेरे जरिए तुझे एक मैसेज भिजवाया। मौला की शहादत को 20 साल हो गए, कहा 20 साल पहले मौला ने आखिरी जमाने में मुझे बुलाया, बल्कि मेरे पास आए थे। मीसम एतम्माद खजूर का बिजनेस करते थे और इतना इनका स्टेटस था कि अली अक्सर इनकी दुकान पे आके बैठ जाते थे, बल्कि कभी कभार, लेकिन ये हमारे आका है गुलामों को इतनी इज्जत देते, कभी कभार ऐसा होता कि मीसम एतम्माद को किसी काम से जाना होता, वो बेतकल्लुफ से कहते कि मौला आधे घंटे के लिए घर जा रहा हूँ, आप जरा बैठ के मेरी दुकान चलाइए। और मौला कहते जा मीसम, अब ये दुकान मेरे हवाले। बाकायदा मीसम एतम्माद की दुकान पे बैठ के मौला खजूरें बेचा करते। लेकिन कहा कि आखिरी जमाने में मुझे बुलाया और कहा कि देखो आज से 20 साल बाद तुम इब्ने ज़ियाद की जेल में जाओ, तुम्हें शहीद तो किया जाएगा, वो वाकया एक अलग वाकया है और हर आदमी को मालूम है। कैसे पूरी डिटेल बताई, मगर शहादत से पहले तुम्हें जेल खाने में हमारा एक चाहने वाला दोस्त मुख्तार मिलेगा, और मुख्तार से कह देना मुख्तार ना मायूस हो ना घबराओ, तुम्हें इस कैद खाने से जिंदा आना। और देखो मीसा यानी कह रहे मुख्तार को इस बात पे शुरू में इसलिए यकीन नहीं आएगा कि इस कैद खाने से आज तक कोई जिंदा नहीं गया, मगर उससे कहना तुम्हें जिंदा आना इसलिए कि खुदा ने अजल से लोहे महफूज में ये लिखा कि तुम्हारे जरिए से मेरे हुसैन के ऊपर जुल्म करने वालों से बदला लिया जाएगा। मुख्तार तुम मर नहीं सकते जब तक कि तुम मेरे हुसैन के कातिलों से इंतकाम ना लो, तो मुसीबतें आएंगी परेशानी आएंगी, मगर ये यकीन रखना कि जिंदा निकलो। तो बस मैं सिर्फ ये मैसेज पहुंचाने आया हूँ, इसलिए कि मुझे खुद अपना भरोसा नहीं कि किसी दिन भी मारा जा सकता हूँ। मुख्तार की मीसम एतम्माद को कैद खाने में पहली और आखिरी मुलाकात, फिर मुख्तार को पता भी ना चल सका कि मीसम पे क्या गुजरी। हमें और आपको पता कि एक मरतबा खजूर के दरख्त से सूली देकर हाथ पैर काटे गए और कुछ वक्फे से जबान काटी गई, मगर मुख्तार को नहीं मालूम। और मुख्तार को कैद खाने के सबसे आखिरी हिस्से में रखा गया। अब ये तो इब्ने ज़ियाद अपनी हद तक प्लानिंग कर ली, इस जिंदगी में कभी मुख्तार बाहर नहीं आएंगे। अब आइए उधर देखिए, पैरेलल प्लानिंग अल्लाह की चल रही है और अल्लाह ने हालात और वाकयात को कैसा बनाया। शहर कूफा हालात नॉर्मल हो गए, यानी जितने महिबान अहले बैत के जेल में आ चुके, सैदानियों का काफिला कूफे से होके बाहर जा चुका, ये रिहा होके शाम से मदीने आ गए। मगर अब वो वक्त आया कि जो कर्बला के लश्कर में यजीद की फौज के सिपाही सबको इनामात दिए जा रहे हैं, सबको रिवार्ड मिले, हर एक को सब कुछ मिला, उमर साथ के लिए फकत रे की गवर्नरी का ऑर्डर अभी तैयार किया जा रहा, लेकिन कूफे के अंदर उसे भी कैश एसेट जायदादें बहुत दे दी गई। बड़े ऐशो आराम से ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में इनके लिए स्पेशल चेयर रखी जाती है, खास वो आदमी जो कर्बला में यजीद के लिए जंग जीत के आए। उधर शहर कूफा अब सिर्फ वो मोमिन रह गए जो सख्त तरीन तकिये में, और उन्हें मालूम कि अब अपने आप को छुपाना और ज्यादा जरूरी हो गया। एक दिन बड़ी शदीद गर्मी थी, कूफे की गर्मी तो वैसे ही मशहूर, मगर उस दिन ये कूफे वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा सख्त वेदर था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। शहर कूफा के एक महल्ले 80 साल का एक बूढ़ा जिसका नाम उमेर इब्ने आमिर कूफी हमदानी, कुछ किताबों में मुल्ला कसीर या कुसैर लिखा है लेकिन असल नाम उमेर उमेर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तकरीर करते वक्त आवाज सही समझ में नहीं आती, ایک برادر محترم نے میری ان تقاریر کو انگلش میں لکھا، عمیر ان کو سننے میں کمیل لگا، تو پوری کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ کمیل کے حوالے سے لکھا، یہ ریپیٹ نہ ہونے پائے مسٹیک، اس لیے میں اس کو دوہرا رہا ہوں، عمیر عین کے ساتھ، عامر اور عمیر، بنی حارث و بنی حمدان، یہ دو قبیلے تو ہمیشہ سے مولا کے ماننے والے، وہاں سے ان کا تعلق، مگر بالکل اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، انگریزی اصطلاح کے مطابق بہت ہی لو پروفائل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا پروفیشن یہ کہ کوپے والے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک مدرسے میں بھیجتے، وہاں پہ یہ بچوں کو قرآن سکھاتے، یہ یزیدی ہیں، دشمنان اسلام ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، قرآن ناطق کو شہید کرنے والے ہیں، مگر انہیں بھی قرآن کی اہمیت کا اندازہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے بھیجوا دیتے ہیں، یہاں تو بعض صاحبان ایمان بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ خانہ ہی خالی ہے ان کے پاس، نہ خود قرآن پڑھ سکے نہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے، اور قرآن مین قرآن کے مطلب کہ دین کی پوری تعلیم، تو میں قرآن پڑھا رہے ہیں، آریٹر اور ٹیچر، یہ دو ایسے پروفیشن جنہیں بہت زیادہ بولنا پڑتا، گلا سوکھ جاتا، گرمی زیادہ ہو تو پیاس اور لگتی، آج کل تو بڑی سہولتیں، پانی بھی ممبر کے ساتھ لا کے رکھ دیا گیا، پہلے بڑا مشکل ہوتا، انتہائی شدید پیاس، کلیجہ پھوکا جا رہا، ایسا سسٹم نہیں ہے کہ گھر میں فریج ہے یا پائپ لائن ہے، ایسا نہیں، آج سے 50 سال پہلے بھی بھشتی آ کے پانی بھرا کرتا، پیاس کی شدت میں قریب سے ایک بھشتی گزرا، پانی پلانے والا معاشی، جیسے 20 سال پہلے تک سعودی عرب میں زمزم بھی اس طرح سے ملا کرتا، خیر وہ گزرا، پیاس بہت شدید لگی، پانی اس کے بعد بڑا ٹھنڈا، انہوں نے گھبرا کے کہا کہ کوزہ پانی کا دینا، پانی پیا، اتنا ٹھنڈا پانی کلیجے کے پاس کلیجے میں پہنچا، میرے ایک محترم استاد کا یہ کہنا، شدید گرمی میں جب پیو ٹھنڈا پانی پیو، اگرچہ صوفی حضرات کہتے نہیں ہر چیز میں آدمی لذتوں کو چھوڑ دے، ٹھنڈا پانی بھی ایک لذت ہے، گرم پانی پیو، اور شاید ڈاکٹر بھی کہیں، لیکن یہ کسی اور حوالے سے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شدید پیاس لگی ٹھنڈا پانی پیو، تاکہ جب شکرن للہ کہو تو یہ دل کی گہرائی سے نکلے، ایک روٹین والا شکرن للہ نہ ہو، واقعا شدید گرمی میں کبھی ٹھنڈا پانی پی کے دے گی، ایسا مزہ آتا ہے کہ اس وقت واقعا خدا کا شکر دل کی گہرائی سے نکلا کرتا، عمیر شدید گرمی، صبح سے بچوں کو پڑھا رہے، گلا سوکھا ہوا، ایسا ٹھنڈا پانی اتفاقا مل گیا، سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس وقت کوئی بھشتی گزرے گا، ایک بار بے اختیار جو یہ پانی کلیجے میں گیا، کتا ہی تقیہ کرے، کہیں تو شیعہ نا، زبان پہ آ گیا خدا ان قاتلوں پہ لعنت کرے جنہوں نے میرے مولا اور ان کے بچوں پہ پانی بند کر دیا، کربلا فوراً یاد آ گئے، میری یہ حالت، 80 سال کا بوڑھا زندگی گزار گیا، 6 مہینے کے بچے کی کیا حالت ہوگی، 6 اور 7 سال کے بچوں کی کیا حالت ہوگی، 3 سال کی سکینہ کی کیا حالت ہوگی، کچھ نہیں، خالی ایک جملہ ان کی زبان پہ آ گیا، خدا لعنت کرے قاتلان امام کا، مگر اسی مجمع میں ہی نہیں کہ شاگردوں قاتلان امام میں سے کچھ کے بیٹے تھے، باقی نے تو توجہ نہ دی، مگر خبیث ترین لوگوں میں سے ایک ہے سنان ابن انس، اس کا بیٹا یہی بولتا، ایک بار اس نے چونک کے سر اٹھایا، اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وی آئی پی ٹائپ کے، ان کی اولادیں لکھنے پڑھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی، آپ ہمیشہ دیکھیں گے وہ زیادہ تر ایسے ہی ٹائم پاس کیا کرتے ہیں، تو ایسے جن کو لکھنے پڑھنے سے دلچسپی نہ ہو وہ اپنے ٹیچر سے ویسے ہی الرجک ہوتے ہیں، ویسے ہی خار کھاتے ہیں، سوچتے کوئی ایسا بہانہ بنے کہ ہمیں ٹیچر سے نجات ملے، اور یہ تو واقعا سنان کا صحیح بیٹا تھا، چوک کے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے میرے بابا پہ لعنت بھیجی، اور خالی میرے بابا پہ نہیں، آپ نے ابن زیاد پہ بھی لعنت بھیجی، آپ نے یزید پہ بھی لعنت بھیجی، اب وہ میری کی سمجھ میں آیا کہ اتنے سال سے میں نے اپنے آپ کو تقیے کی شیل میں چھپایا تھا، مگر کتا ہی آدمی چھپائے، بہرحال جو عقیدہ ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، آج یہ کیا ہو گیا، گھبرا کے کہا نہیں بیٹا یہ تو ایسے ہی میری زبان پہ آ گیا، کہا ایسے ہی نہیں آیا، آپ نے جس طرح کہا اس سے لگ رہا تھا کہ آپ یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم آج میرے بابا کا کتنا اونچا اسٹیٹس ہے، اور ابن زیاد تو کوفے کا حاکم ہے، آپ نے یہ ہمت کیسے کی کہ سب کے سامنے میرے بابا اور اس کے سردار کو برا بھلا تھا، पहले बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, 80 साल का बूढ़ा 14-15 साल के बच्चे के आगे माफी मांग रहा है, बात को बराबर कर रहा, सफाई पेश कर रहा, लीपा पोती कर रहा। मगर बहरहाल उस वक्त तो चुप हो गए। बेटा था ऐसा था कि जिसके बारे में हदीस है दुश्मन अहले बैत की औलाद भी आमतौर पर हलाल की औलाद नहीं होती, उसे बदला ले रहा। अब दोपहर का वक्त आया जो लंच छुट्टी हो जाती है मदरसे की, आपको पता है कि सारे मेडिटेरियन और सारे मिडिल ईस्ट में दोपहर के वक्त ऑफिस बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती। ये रोजाना 2 बजे वापिस घर आता, आज नहीं आया। अच्छा माँ कैसी क्यों ना माँ फिर माँ हो, सिर्फ वेस्ट में जो आजकल माए आई है वो एक अजीब कैटेगरी की माए, वरना हमेशा से माए जो है अल्लाह एक ही फ्रेम में से बना बना के निकलता, औलाद से हर एक को मोहब्बत होती। अब वो सनान की बीवी वो भी कितनी सख्त दुश्मन अहले बैत होगी, मगर बेटा देता है 2 बजे आता है, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, और माँ परेशानी की आलम में घर के सहन में बिलबिला के घूम रही, कहा है मेरा बेटा क्यों नहीं आया। खुदा खैर करे, हजारों वसवसे ऐसे मौके में दिल में आते हैं। कराची की माओ को थोड़ा सा ये वाकया समझने का मौका मिल रहा, ऐसे हालात है कि सुबह घर के मर्द निकलते हैं, किसी औरत को यकीन नहीं होता कि शाम को मेरे सुहाग खैरियत से आएंगे कि नहीं आएंगे, और स्कूल जाने के लिए सुबह बच्चे घर से निकलते, किसी माँ को यकीन नहीं होता कि ये दोपहर को खैरियत के साथ वापिस आएंगे। रोजाना जीते हैं हम लोग, रोजाना मरते हैं हम लोग। इसमें तो महाराज अगर एक इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ये भी बहुत अहम बात, लेकिन वैसे सोचना है कि इससे बढ़ के भी हमारी कोई जिम्मेदारी। अब बेचैन, और ये बच्चा कहाँ चला गया, थाना उसका बेटा, इसने सोचा कि अच्छी सजा दिलवाना, आइंदा ताकि कोई आदमी कातिलाने इमाम पे लानत ना करे। ये मदरसे से छुट्टी होती शहर के बाहर गए, अच्छा पुराने शहर बहुत छोटे छोटे होते, आज अगर किसी से कहिए कि मस्जिदुल नबवी पुराने मदीना में सिटी सेंटर में था और जन्नतुल बकी शहर से बाहर एक वीराना माना जाता था, यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि मस्जिदुल नबवी और जन्नतुल बकी में डिस्टेंसी कितना है। मगर पहले जमाने में बिल्कुल शहर से बाहर और मस्जिदुल नबवी बिल्कुल सिटी सेंटर डाउन टाउन, इतने छोटे शहर, शहर से बाहर गए। वीराने में जाने के बाद कपड़े फाड़, अपना जिस्म खुद अपने नाखूनों से नोचा, अपने सर से अमामा उतारा जो उलमा की निशानी नहीं थी पहले जमाने में अरबों का ड्रेस था, उसमें पत्थर बांधे और फिर वो पत्थर वाला कपड़ा अपने सर और अपने बदन पे मारा, खून निकल आए। अब देखिए कितना सा दुश्मन है अहले बैत, ये सारी अजियत ये टॉर्चर अपने आप को क्यों दे रहा, इसलिए कि आज ये 5 बजे शाम को घर पहुंचा, खैरियत से भी घर आता तो माँ इसको देख के पागल हो जाती, गले से लगाती, कलेजे से चिमटाती, बोसा देती, बेटा कहाँ चला गया, अजीब हालत होती, खुशी के आंसू बहते। अब जो आया तो जख्मी आ रहा, खूनम खून आ रहा, कपड़े तो फटे हुए नजर आ रहे, माँ घबरा गई, बेटा क्या हुआ, रोते हुए और एक मरतबा दारो कतार रोते हुए कहता, अम्मा आज मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा। अरे बेटा क्यों मारा, ऐसा कौन मारेगा, क्या इसलिए मारा कि वो मेरे बाप पे लानत कर रहा था, वो अमीरुल मोमिनीन यजीद पे लानत कर रहा था, हम भी करेंगे लानत, लेकिन अमीरुल मोमिनीन इसलिए कहा कि उसका जुमला कोट करना, वो इब्ने ज़ियाद पे लानत कर रहा था, मैंने मना किया तो उसने कहा मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा, मुझे पकड़ के रस्सी से बांधा, अपने कमरे में ले गया, इतना मारा कि मैं मरने के करीब हो गया, इत्तेफाक से रस्सी टूट गई और मैं निकल के भागा। अब तो वैसे ही जरा सी बात माँ सुन ले किसी से कि मेरे बेटे को किसी ने बुरा कहा, देखा होगा ना पाकिस्तान में गली के अंदर आमने सामने के मकान की औरतें कैसे हाथ नचा नचा के एक दूसरे का सारा शजरा लेके आती, वो बात होती है बच्चों के जगह, या खारादार के फ्लैट की बालकोनी में आमने सामने खड़े होकर औरतें कैसे आपस में लड़ा करती, वो मसाला यही होता है ना औलाद का मसाला। तो ये तो अपने आप को VIP समझने वाली औरत, और बेटा भी इस बुरी हालत में आया, हमारा तो बच्चा आगे फकत इतना कह दिया कि फुला ने ये कहा, या तो जख्मी है, कपड़े फटे हैं, बदन नुचा है, खून जारी है। शाम के वक्त जब सनान दरबार से आए तो बीवी ने कैसे बताई, और ये आपने से अरे का मुशाहिदा होगा, एक मिनट का वाकया है, औरत जब बताएगी आधे घंटे का वाकया कर देगी। अब इधर से नमक मिर्च खाने में भी छिड़कती है, वाकयात में भी छिड़कती, जितना बच्चे ने नहीं कहा उतना बढ़ा के बीवी ने बता दी, सर अनाज बबूला हो गए। रात का वक्त है, दरबार खत्म हुआ है, उसी हालत में बच्चे को लेकर सीधा इब्ने ज़ियाद के महल में गए। इब्ने ज़ियाद भी घबरा के आया, खैरियत हुआ, अभी तो तुम दरबार में बैठे, कहा खैरियत कैसे, ये हमारी खिदमतों का सिला, हमने हाकिम के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और हालत यह है वही हुसैन के चाहने वाले हमारे शहर में हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे में इतना टॉर्चर करते, जरा देख। इब्ने ज़ियाद घबरा गया, तेरा बेटा किसने कर दिया, पूरी कैफियत बता दी। वह एक बार गुस्से के आलम में कट जाओ, और इसी वक्त आधी रात को उस बुद्धे को उठा के लाओ। और जैसे ही वो आया, इब्ने ज़ियाद ने कहा तू 80 साल से शहर कूफा में रह रहा, यानी 80 साल का मकसद जब से कूफा बना, वो कूफा बना था 17 हिजरा में, आज तक तेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं आई, सारी रिपोर्टें तेरे हक में आ रही थी, मेरी CID मेरा मुखाबिरा, अगर आज तूने ऐसा जुर्म किया कि मैं कोई तुझे मोहलत भी नहीं दूंगा, वार्निंग भी नहीं, सीधा जेल। कौन सी जेल, चोरों और डाकुओं वाली नहीं, वही बाने अहले बैत वाली। और एक बार उठा के उमैर को उस जेल में फेंक दिया गया, ज़ारो क़तार रो रहा, खुदा बंदा सुबह जो आई थी खैरियत से था, आराम से था, इत्मीनान से था, मौला की मजलिस घर में छुपके से करके घर से निकला, सारी दुआएं पढ़ के निकला, और ये एक दिन में क्या हो गया, एक ऐसी जेल में डाला गया उमैर, कूफे का रहने वाला बूढ़ा आदमी, पता है कि यहाँ जाने का मकसद है किसी को कब्र में डाल देना, आज तक यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला, मरना ही मरना है, मौत तो यकीनी, और ऐसी मौत क्योंकि इसके अंदर ऐसा ही है जैसे किसी को कब्र में डाल दे, न खाना मिले न पानी मिले, बीमार है तो दवा ना मिले, देखने को कुछ मंजर ना मिले, अंधेरा, मरना यकीनी। अब रो रहा, बहरहाल एक आध दिन के बाद दाएं बाएं पूछा, तुम कौन, अरे एक एक नाम सामने आ रहा हो, मैं घबरा रहा, अरे तुम जाओ, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आखिर उमैर को ये खुद एक अच्छी हॉबी लगी कि तो सारे जानने वाले हैं, मुझसे छोटे हैं मेरे सामने के, वो सर्वे करता करता पूरे कैदखाने में जा रहा, यहां तक कि आखिर कैदखाने में पहुंच गया, वहां देखा कि कोई कैदी ऐसी हालत में, साफ नजर तो नहीं आ रहा मगर ऐसी बुरी हालत में कि अब तक 4,500 में से किसी की यह हालत न थी, और ये कैदी सर के बाल बहुत बड़े हो गए, इसका चेहरा भी पूरा छुपा, पूरा बदन जंजीरों हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ा, अपनी जगह से हिलने की ताकत नहीं, इतने अरसे में मुख्तार के बदन पर ये हथकड़ी बेड़ी और गले के तौक के जख्म बन चुके, और तकलीफ अलग हो रही थी, आह 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 कर रहे थे। उमैर घबरा गया, ये कौन कैदी, ये सारे के सारे शियाने हैदर कर्रार, इसे उनसे भी ज्यादा बुरी हालत में क्यों रखा गया, कौन हो तुम, बाल पड़े, क्या मेरा नाम मुख्तार, अरे तुम हो मुख्तार, हम तो ढूंढ रहे थे कि मुख्तार को तो मुस्लिम ने कूफे के बाहर भेजा, वो कहाँ गायब हो गए, हमारे दिल में ख्याल आया कि शायद तुम कहीं भाग गए, तुम यहाँ हो, क्योंकि मुख्तार जो आए थे तो अचानक दरबार में लाए गए थे, कूफे के गेट से दरबार, तुम यहाँ हो, और मुख्तार जो अभी तक कर्रा रहे थे आ आ रोक दिया कर रहा था, उमैर तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अरे मेरा इंतजार, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं, एक दिन पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ आऊंगा, कहा कि तुम्हारा इंतजार मैं इसलिए कर रहा था कि नहीं समय तमाम मुझसे कह के गए, यार मुख्तार जिस दिन उमैर इस कैदखाने में आए समझ लेना तुम्हारी आजादी का इंतजाम हो रहा, उमैर घबरा गए, कहा मैं तेरी आजादी का क्या इंतजाम करूं, मैं तो खुद कैद में आ गया, कहा तू कैद में फकत मेरे लिए लाया गया, कल ही तुझे कैद से रिहा किया जाएगा, और वादा करके जाके मेरा एक काम करेगा, मुझे खत लिखना है, ये खत लिखने का सामान भी भेजेगा और खत को पहुंचाएगा भी। उमैर हंसने लगे, मुख्तार अच्छा मजाक कर रहे, मुख्तार ने कहा नहीं, मौला की कसम, मौला का शागिर्द मीसा मुझे बता के गया, वादा करो, कहा मुझे यकीन नहीं है लेकिन चलो अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ, और ऐन उस मौके पर कैद खाने का दरवाजा खुलने की आवाज आई, मुख्तार ने कहा कल तो बहुत दूर की बात है, ये तुम्हारी रिहाई का इंतजाम हो गया तो मैं कैसे निकाला जा रहा, बाकी बातें इंशाल्लाह कल, इसलिए कि सवा ना हो सके, भाई दरवाजा खुल रहा था और यहां से मौजू कल आगे बढ़ेगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ, और वो रिक्वेस्ट ये कि महाराज मुझे कोई एतराज नहीं है एक घंटे की मजलिस में भी जो मुझसे कहा जाएगा मैं मैटर आपको दूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो ये हो सकता है कि जो वीकेंड वीक डेज में हमें पता है आपकी मजबूरियां, आपको कोई सहमत नहीं दी गई, क्योंकि अब ये 3 दिन लॉन्ग वीकेंड, तो आप 15 मिनट पहले अगर मजलिस में हिस्सा लेना कि 7:45 तक मेरा बयान शुरू हो जाए, तो 1 घंटा 20 मिनट की मजलिस होगी, नमाज भी तकरीबन वक्त पे होने लगेगी और मुझे बयान करने के लिए टाइम भी ज्यादा मिलेगा। मैं ऐलान आप करके बात आप पे छोड़ता हूँ, अगर आप 7:45 आ गए तो मैं मेंबर से हूँ, बल्कि उससे पहले आइए 7:30, इसलिए जी से किसा भी है, सलाम भी है, मरसिया भी, मेरा बयान 7:45 शुरू होगा, और आप नहीं आए तो मैं तो जाऊंगा, और फिर जिस वक्त इतना मजमा आएगा कि उसमें मजलिस पढ़ते हुए जरा अच्छा लगे उस वक्त मेरा बयान शुरू होगा। कायदा खाने का दरवाजा खुला, समझ जाओ तुम्हारी रिहाई का इंतजाम हो रहा। उमर ने घबरा के कहा तुम, कहा कि अभी ये हथकड़ी और बेड़िया मुझे कुछ अरसे और पहनना। लेकिन उमर खुद कहते कि जितनी देर मैंने मुख्तार से बात की मुझे साफ लग रहा था कि मुख्तार से बोला नहीं जा रहा, ये हथकड़ियों का वजन, ये बेड़ी का वजन, ये गले का तौक, गर्दन झुकी है, गर्दन नहीं उठाई जा रही, ये चंद जुमले मुख्तार ने कहे, और साफ ये महसूस हुआ कि बड़ी जहमत और परेशानी के साथ। अब जरा सोचिए, जब मेरे आका सज्जाद को दमिश्क की मस्जिद में तकरीर करना पड़ी थी उस वक्त क्या हालत, आज जुमे का दिन था ना, आपने नमाज जुमा में शिरकत की, एक ऐसे ही जुमे का तस्किरा हो कि यजीद ने कैद खाने से सज्जाद को बुलवाया था, मस्जिद में बिठाया था, मिंबर के नीचे सज्जाद था, मिंबर पर यजीद का दरबारी खतीब और मुल्ला, और उसका काम यह था कि वो यजीद के कसीदे पढ़े, इधर उसकी तकरीर मुकम्मल हुई, मेरे मौला सज्जाद ने पहले तो उसको टोक दिया कि आए खतीब तूने दुनिया खरीदने के लिए आखिरत को बेच दिया और बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया और कितना बदतरीन सौदा किया, और फिर मेरा मौला खड़ा हुआ, यजीद तेरे आदमी को जो कहना था कह दिया, अब मुझे भी इजाजत है कि मैं कुछ कहूँ, इमाम किसी की इजाजत का मोहताज नहीं, ये वही जो आज की मजलिस का अनवान था, मजमे को इन्वॉल्व करना, मेरा मौला ये चाहता कि सारा मजमा इस वाकये में शरीक हो जाए, यजीद सोच रहा है कि मैं क्या कहूँ, उधर मजमे को इंटरेस्ट हुआ, एक मरतबा कहा कि हाँ यजीद हम इनकी तकरीर सुनना चाहते हैं, मजमे को क्यों इंटरेस्ट हुआ, इसलिए कि मजमे ने हजारों मुकर्रर और ओरेटर देखे, ऐसा मुकर्रर नहीं देखा जिसके गले में तौक हो, हाथों में हथकड़ी हो, पाँव में बेड़ी हो, और इसीलिए यजीद से पूछना नहीं था, मजमे को अपनी जानिब डाइवर्ट करना था, इसीलिए यजीद के जवाब का इंतजार ना किया, मिंबर पे गए और कहा जो मुझे जानता है सो जानता है और जो नहीं जानता तो मैं अपना तारुफ करा दूं, अनब्न मोहम्मद अल मुस्तफा, अनब्न अली अल मुर्तजा, अनब्न फातिमा अज़हरा, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, मैं अली मुर्तजा का फरजान, मैं वारिस फातिमा ज़हरा, अरे मैं मक्के का मालिक, मैं सफा और मरवा का साहिब, अरे मैं हरम का महाफिज, खाली इतना नहीं मैं उसका बेटा जिसका सर पसे गर्दन से जुदा किया गया, मैं उसका बेटा जिसका लाशा घोड़ों तले पामाल किया गया, मैं उसका बेटा जिसकी बहनों और बेटियों को बेमकदा चादर के बाजारों और दरबारों में ले जाया गया, आए दरबार में कोहराम बपा हो गया, यजीद घबरा गया, इंकलाब ना आ जाए, घबरा के मौजिन से कहा अजान दे और इसकी तकरीर को काट दे, और उधर अजान में जुमला आया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक बार झुके मौला, यजीद ये तेरे जब का नाम लिया जा रहा या मेरे जब का नाम लिया जा रहा, आखिरी दो जुमले सुनिए, अजादारों आपने सैकड़ों मजलिसों में शिरकत की है, मैंने सैकड़ों मजलिसें पढ़ी है, जाकिर कैसा ही क्यों ना हो उसे हाथों की आजादी चाहिए, उसे पैरों का मूवमेंट चाहिए, उसे गर्दन को घुमाना है, आइए कैसा खतीब था, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, और इसकी मजलिस जारी है, और एक जुमला मौला सज्जाद से कहना है, मौला आपकी मजलूमियत पे हम कुर्बान, इसे तौहीन ना समझिएगा, मौला आपको तकरीर ना करने दी गई, مگر آپ کی تقریر اگر روکی گئی تو اذان کے ذریعے روکی گئی. آئے کربلا میں آپ کا بابا جب اصغر کو لے کے آیا اور پسرے سعد نے کہا اقطاع کلام الحسین, وہ اذان کے ذریعے نہیں روکا گیا اور مولا کا تین بھال کا تیر چلا, اصغر کا گلا چھدا, بچہ حسین کی ہاتھوں میں تڑپا اور حسین نے کہا خدا بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رضان بے قضا ایک و تسلیما لعمرک. خدا بندہ معصوم علی اصغر کے خون نا حق کا واسطہ اور مظلوم سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ, صاحبان ایمان خصوصاً آج جو مومنین اور مومنات آئے ہیں ان سب کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان آنسوؤں کا واسطہ جو مومنین کی اور مومنات کی آنسوؤں میں ہیں آنکھوں میں ہیں ان کی تمام دعائیں قبول فرما. خدا بندہ حسین اور اصحاب حسین کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً آج جن کا انتقال ہوا اور جنہیں آج دفن کیا گیا, آل علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.